ವ್ಯಾಸಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಮಹಾಭಾಗವತರು. ಅವರು 1946 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಅಂತ ಇವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 22 ಬಾರಿ ತಿರುಗಿ 100+ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ, ರಾಧಾದಾಸ್ಯ ಅದನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿರಋಣಿಗಳು. ಇವರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಅವರು ಯೂಸ್ಟನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ UK ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಈ ಗವರ್ನರು ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 100 ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಮಾಧವ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೋಸ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಹಾಭಾಗವತರು. ಇವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವತರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಗುರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಮಹಾಭಾಗವತರು. ಇವರು ಇವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಅಷ್ಟು ಸಾಲದು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು 3ನೇ ದಿವಸ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಂಚ ಕಲ್ಪತು
ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯ ತದಾಲಯೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯ ತದ್ಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫರ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ಒಬೆಸನ್ಸಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪರಮ ಆರಾಧ್ಯತಮ ಗುರುಪಾದ ಪದ್ಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಜ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶಿಶಿಮತ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ಒಬೆಸನ್ಸಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ನಿತ್ಯಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಣ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶ್ರೀಮತ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಆಲ್ಸೋ ಆಫರ್ ಒಬೆಸನ್ಸಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ತ್ರಿದಂಡಿ ಪಾದ್ಗಣ್ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಷ್ಣವೀಸ್. ಟುಡೇಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಡೇ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಲ ಗುರುದೇವ್. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ದೇವಹುತಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಓ ಮೈ ಮದರ್ ಲಿಸನ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಬಿಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗಾನ್ ಮಮ ವೀರ್ಯ ಸಂವಿದೋ ಭವನ್ ತಿರತ್ಕರ್ಣ ರಸಾಯನ ಕಥಃ ತಜ್ಜೋತ್ಸ್ನಾತ್ ಆಶೋಪ ವರ್ಗ ವರ್ತ್ಮನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ರತಿರ್ ಭಕ್ತಿ ಅನುಕ್ರಮಿಷ್ಯತಿ. ಓ ಮೈ ಮದರ್, ಇಫ್ ಯು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಸಂಗ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹರಿಕಥಾ ಫ್ರಮ್ ದರ್ ಲಿಪ್ಸ್, by serving them, tadvitti pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnanena tattvadarshina. If you associate with the Vaishnavas who are tattvadarshi, knowing what is Brahma tattva, what is Paramatma tattva, what is Krishna tattva, Bhagwan tattva, and especially Krishna tattva, and even more than that, Radha tattva, Vrindavan tattva, and even more than that, the Prema tattva between Radha and Krishna, oh, then your life will be successful. And the three stages of bhakti, sadhan bhakti, bhava bhakti, and prema bhakti, you'll perfect and you can achieve the success of your life. So, this most confidential instruction we can practice today by associating and hearing Harikatha from the lips of your devotee. Sarup Damodar told one professional Bhagavat speaker that Japada Bhagavata Vaishnagarasthane Ekanta Asharekara Chaitanya Charane. That if you want shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, then go and study Srimad Bhagavatam under the guidance of a Mahabhagavat Vaishnava. Shri Shukdeva Goswami Pad actually instructed Srimad Bhagavatam to Suta Goswami, and he does pranam mantra to his Gurudev. Yampra Vrajantam Anupetam Apetakutyam Dvaipayano Virahakatara Ajuhava He says, my Gurudev, tam sarva bhutarudhayam munimanatosmi. My Guru Maharaj is in the heart of everyone. He is as good as Krishna. He is present everywhere. He is omniscient. He knows everything. So our Gurudev appeared in this world in 1921 in Bihar, in the Buxar district, in the town named Tiwaripur, in the banks of the Ganges River. Very auspicious location, and he appeared on the Amavasya day. The confidential reason why Srila Gurudev appeared on Amavasya day is that only because there is Amavasya, there is dark moon, there is new moon day in our life, there is no light in our life. And in order to shed light of his lotus moon-like feet in our life, he appeared on the Amavasya day. He also appeared where Ahalya was rescued, was redeemed by Lord Sri Ramachandra. Lord Sri Ramachandra, by touch of his lotus feet and shedding some foot dust on her body, made her again alive and made her a woman again. So similarly, Srila Gurudev is touching my stone-like body and making me a human being, and more than that, is trying to make me a devotee of Krishna. Srila Gurudev is an eternal associate of Radha Krishna. Every morning we sing, Sakshad Haritvena Samasta Shastra Ukta Tata Bhavyate Vasadvi Kintu Prabhurya Priyeva Tasya Vande Guru Sri Charanaravindam. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur Pad says that my Guru Maharaj is Sakshad Hari. He is directly Hari. There are two types of Hari. There is Ashray Hari and there is Vishay Hari. And Vishay Hari is Lord Sri Krishna himself. And his pure representative, Srila Gurudev, is Ashray Hari. We serve Lord Sri Krishna, Vishay Hari, under the guidance of Ashray Hari. But he is also very dear to Lord Sri Krishna. Srila Raghunatha Goswami in Manas Shiksha, he says, Guru Goshthe Goshtha Laishu Sujane Husragane Swamantre Shri Namni Vrajanavaya Dvanda Sharane Sada Dhamma Mitva Guru Ratim Apurva Maditaram Ay Swantar Bhratas Chakrabiravi Achat Dhritapadaha. He catches the lotus feet of his mind and he says, Raghunatha Goswami Pad, oh my dear mind, if you wish your welfare and welfare of the soul, then please have very strong attachment to the lotus feet of pure devotee, especially Guru. He says, at the lotus feet of Diksha Guru, Shiksha Guru, Bhajan Guru. So, who is Srila Gurudev? Srila Raghunatha Goswami Pad says that na dharmam na dharmam shrutigana nrattam kila guru braje radha krishna prachura paricharjam ihatanu shachi sunam nandishwara pati sattatve guruvaram Mukunda Preshthatve Param Ajastra Nanu Smara Manaha. That Srila Gurudev is Mukunda Preshtha. Now, Mukunda is one who gives liberation. But more than that is Sri Krishna, whose lotus feet is like Kunda flowers. So Srila Gurudev, being an eternal associate of Sri Krishna, he comes down to this material world in order to redeem us. And he is completely transcendental. Sachidanandamai. So Srila Gurudev, in his human pastimes, he has widely preached, especially he has translated, edited, compiled and published more than 100 books. He has authored more than 100 books. He has translated Jaiva Dharma from Bengali language. This Jaiva Dharma is the most essential book. Everyone should read it. Srila Bhaktivinoda Thakur has put the essence of all the Vedas, Upanishads, Puranas, Mahabharata, and all the Srimad Bhagavatam, all the Bhakti Granthas, he has put in one single book, Jaiva Dharma. It has been translated into Hindi language by Srila Gurudev by great effort. He has arranged more than 50 Brajamandal Parikramas, 50 Navadvip Parikramas, and every year when there is Adhika Mass, whenever there is Adhika Mass, in Purushottam Mass, he arranges also Brajamandal Purushottam Dham Parikrama. And so many people take advantage and try to understand what is Dhamma Tattva, what is Vrindavan Tattva, what is Navadvip Tattva, and the sweet Leela Sthalis. Srila Gurudev says, Narad Muni has received two benedictions. One benediction is that if anyone sings the holy names of the Lord Shri Krishna, which are pertaining to the Vrindavan Leela, he will develop Krishna brain. Another benediction is, if he touches the Leela Sthalis in Vrindavan, then that person will also develop prem towards Lord Shri Krishna. So Srila Gurudev has renovated and reconstructed many pastime places of Lord Shri Krishna by such as Radhakund cleansing and so many other important projects he took over. And he has furthermore plans to make sure that the holy places of Vrindavan remain in good order. So who is sadhu? Srila Jiva Sadhayati sadhanoti iti sadhu. That one who achieves Krishna Prem himself and he also helps other people achieve Krishna Prem, that person is sadhu. So, to come in the association of a sadhu, then our bhakti begins. 64 limbs of bhakti, the first limb is Guru Padashray and second, Diksha and Shiksha. So, unless we come at the lotus feet of Gurudev, the bhajan does not even begin. Srila Gurudev is initiated by Param Gurudev, Nitala Pravishtam Vishnupada Ashtottar Srimad Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. My tongue fails to describe the innumerable great qualities of this Mahabhagavat and eternal associate of Shishi Radha Krishna. One time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada was arranging Navadvip Parikrama. So many Sahajiyas, Smartha Brahmanas were against Srila Prabhupada because he was preaching pure bhakti. That time they attacked the Navadvip Parikrama with soda water bottles, stones, and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's life was endangered. That time Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, he was Vinod Bihari Brahmachari in white clothes. He told Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati that please exchange our clothes. I will take your sannyas clothes and you should take my white clothes. And this way, because they look very similar to each other, that they will mistake me to be Srila Prabhupada and they will try to kill me. I am willing to give up my life for my Guru Maharaj, but I want to protect my Guru. So here we can see a great equal with Kuresh and Ramanujacharya. How Kuresh was willing to give his life for Srila Ramanujacharya. So same, this great personality was accepted by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada as his sannyas guru. And when Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj entered in Aprakat Leela, Nitya Leela of Radha Krishna, that time Srila Prabhupada was in Seattle. And in Seattle he called all his disciples and he told them, please write an offering at the lotus feet of my sannyas guru. And he exactly used the same words which Srila Raghunath Das Goswami has used in Vilapa Kusumanjali to pray to Srila Sanatana Goswami Pad. Srila Raghunath Das Goswami says that how my guru Srila Sanatana Goswami tried to inject Vairagya in me. Vairagya bhakti rasam prayatne apayan mam anavipsamandam krupam buddhirya paradukha dukhi. Sanatanam tam prabhu maashrayami. Similarly, Srila Prabhupada said, Vairagya bhakti rasam prayatnair apayan mam anavipsavandham krupam buddhirya paradukha dukhi Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami prabhu maashrayami. We can see that our whole parampara from Srila Rupa Goswami, Srila Raghunath Das Goswami and our Srila Gurudev are of the same quality. Nikunja yuno ratikeli siddhai yayali viryukti rapekshanya tatravi dakshadati vallabhasya vande guru shri charanaravindam. Srila Gurudev is assisting Radha Krishna in his confidential pastime Nikunja Leela. What type of guru he must be? Srila Gurudev is embodiment of all the scriptures. All the scriptures are very much present. As we know, there are two Bhagavats. There is Book Bhagavat and there is Person Bhagavat. Book Bhagavat is also of two types, Srimad Bhagavatam and Chaitanya Bhagavat. And in order to receive the mercy of Srimad Bhagavatam and Chaitanya Bhagavat, we must approach a Person Bhagavat. And we should try to hear from his lotus lips, because there is Shabda Brahma and Shabda Samanya. We may try to chant Harinam without taking initiation. It is Shabda Samanya. It is not Shabda Brahma. Shabda Brahma emanates from the lotus leaf of pure devotee. And Shabda Brahma is like a bullet which has gunpowder in it. While Shabda Samanya is a bullet without any gunpowder in it. So all the prema in the heart of a pure devotee is present in the Harinam sound vibration emanating from his lotus lips. When the disciple accepts it through his right ear and it goes to his heart, it cleanses his heart, and when he repeats the same Shabda Brahma, the Harinam Maha Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, it cleanses his heart. Vancha Kalpataru Vesha Krupa Sindhu Bhairata Santanam Bhavanibhyo Vaishnave Bhyo Namo.
About bhakti. What is bhakti?
Om Jnana Kumarandasa Jnananjana Shulakaya Chakshul Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Guru Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadvaktaya Namo Namaha. I offer my most humble obeisances under the lotus feet of my divine spiritual master, Nityalila Pavishta Om Vishnupad Asta Tarasata Shishimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, and the same heartfelt obeisances unto the lotus feet of my Shiksha and Sannyas Guru, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. So, in the last few days, Srila Gurudev and the assembled devotees have been discussing bhakti and the process to attain it. And many points have been covered, and I'll just speak on a few small ones. I was prepared for something else, but you wanted me to speak on
bhakti.
Bhakti. Okay. First of all, in order to understand bhakti, we have to understand how to approach bhakti. In other words, we've been hearing the last few days about the process to obtain pure bhakti, the process to obtain Krishna consciousness. And last night, Srila Gurudev requested that the history of Srimad Bhagavatam be discussed. And in that history, many points were brought up, many ideas were brought forth about how the Srimad Bhagavatam was conceived and why, under the order of Sri Narada Muni to his disciple Srila Vyasadeva, the author of Srimad Bhagavatam. And this is described in the first canto of Srimad Bhagavatam, but there are a couple of verses there which are very important, and they touch on the meaning and the purpose of bhakti. Now, the first verse was Anarto Pashanam Sakshad Bhakti Yoga Mathokshade Lokasyan Janato Vidvangs Chakre Satvita Sanghitam. That in this age, we have many different kinds of contamination, many different kinds of anartas, unwanted problems in our heart. So, Vyasadeva was contemplating that and wanted to understand how to mitigate and solve those problems. And therefore, he was instructed to compile Srimad Bhagavatam, which was the means by which the living beings could understand bhakti. But he continued. The instruction then was given that Yasya Vai Shriyamanayam Krishna Paramapuruṣe Bhakti Upadyate Pumsa Shoka Moha Vayapada, that the miseries of the living being, the shoka, this lamentation, this moha, this illusion, and vaya, this great unhappiness that we have, can all be mitigated by the process of bhakti itself. This will sprout in the heart if one gains oral reception from about this Bhagavatam that we were talking before, if one gets oral reception from a great self-realized soul. So first of all, bhakti, in order to understand it, you have to hear properly from a self-realized soul. Now we know that the process of bhakti has been described since the time of Vyasadeva and before through the great scriptures, Srimad Bhagavatam and others. And in that line, there have been many great acharyas. And in recent history, 500 years ago, Sri Chaitanya Mahaprabhu came to expand and deliver a clear indication of what bhakti truly is. And he imparted that understanding unto the heart of his very dear disciple, Srila Rupa Goswami. And Srila Rupa Goswami Pad has given the best and most complete definition of bhakti that there is. Anya vilashita shunyam, jnana karmadi navritam, anukulyena krishnana shilanam bhaktir uttama. And this definition, Srila Gurudev, when he travels around the world, everywhere he lectures, he speaks at least some time on this verse. And this is very important because we have many ideas of what bhakti might be. We all know in Srimad Bhagavad Gita, Krishna says many things to encourage the living entity, us, how to approach him and how to serve him. Most of us think that bhakti means something like yat karosi, yat ishnasi, yat jahosi, tadasi yat. To, in other words, whatever we do, whatever we offer, whatever we give away in charity, in all of our daily work, we try to think of God and we offer some of the results of that work to him. We try to make God the beneficiary of our daily work. But this is not the definition of pure bhakti. This is a stepping stone. This is part of the way to pure bhakti. Pure bhakti means, according to Srila Rupa Goswami, that activity which is solely and wholly for the pleasure of Sri Krishna, which is performed unceasingly, just like honey or oil flows from a jar with an unbroken stream, non-stop. And an activity that is done with all one's body, all of one's mind, all of one's words, and a complete favorable mood. All of your sentiments and your feelings and your heart are dedicated in that way for the pleasure of the Lord. And it also must be free from any other kind of contamination. The contamination of karma, karma yoga, that is that I want to please God, but I want something for myself also. And it must also be free from any kind of jnana, that is, mental speculation that culminates in an impersonal or mayavadi conception of the Lord. This is a very complete and very beautiful description. And if you meditate on this carefully and understand, it will give you an aspiration further and higher than you may have ever considered that bhakti was before. Most of us now or in the past have been engaged in a kind of bhakti which is self-interested. And it's based on a bodily conception. For instance, if I'm a grihastha, I'm a householder, I have the conception that I have a job, I have a wife, I have a family, and I have a business or something that makes profit. My idea of bhakti might be, I'm going to work very hard and give some of that profit to God. That's my conception of bhakti. Oh Lord, please make my business successful, and I'll give you some of the fruits of that. But see, this is not real. I mean, if you think about it just a little bit, God already owns everything. He owns everything in this world. The entire universe, he's the creator of it. He doesn't need your job. He doesn't need the little money that you can donate. It's already his. See, so this is an incomplete idea. And it's also based on the false conception that something is mine. Nothing is ours. Everything belongs to Krishna. So in order to understand bhakti, we have to understand ourselves as a spirit soul, and have a relationship with God, with Krishna. Now, that is where Sri Guru comes in. Because this conception of bhakti is completely unattainable, completely unapproachable, unless we have Sri Guru there in order to instruct us and to bring us into connection with God, with Bhagavan. Now, there's a very common and popular philosophy that goes around Bangalore now, that my guru can be approached solely in the heart. For instance, many people, even though they've never met him, even though they were born after he left this world, think that they are disciples of Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the founder of ISKCON. How can that be? How can you have a relationship? How can you know? How can you understand the instruction of Sri Guru if you cannot approach him directly? Because you are not pure. Krishna describes in Srimad Bhagavad Gita who is qualified to speak to Guru or God in the heart. And Srila Prabhupada told me this directly, that only when you come to the platform of Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Pritipurvakam Dadami Buddhi Yogam Tam Yena Mam Upayanti Te, to those souls who are constantly devoted to me, who are constantly worshipping, just like in this verse, Anya Vilashita Shunyam Jnana Karmadyanavritam Anukulyena Krishna Anushilanam Bhakti Rutama. When that engagement, when your relationship with Krishna, when your service is unceasing, it never stops, when you're always engaged in your body, your mind, and your words, and your moods are completely purified of all kinds of other contamination, then you may know God within the heart. You may approach Guru within your heart. Otherwise, you have to bow down and accept. So, thank you very much. Hare Krishna. Why don't you call the Guru Vishnu to the
Can you speak in Kannadi, what he has told? Something? Yes? In Kannada language. No, hey, Prabhu. You. Come.
Kannada.
Come on. Local language. You should speak something. What he told.
ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मुखं करोति वाचालं प्रभुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारुणं नानो ननगे कन्नड एष्टु फ्लो बरल्ल तमिळ् मिक्स् आगिरुत्ते
ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ
ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಪಾದ ಪದ್ಮ ಚರಣಾರವಿಂದನ್ನ ಕೋಟಿ ದಂಡವತ್ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವಂತ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೃಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವೃಂದ, ವೈಷ್ಣವಿ ವೃಂದವ ದಂಡವತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ವೈಕಾನಸ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಭಿಭಾಷವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ವೈಕಾನಸ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ತೋರುತ್ತಿದೆಯೋ ಹಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಎಂದು. ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಯ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚಂದ ಓದಬೇಕು, ಹೇಗವರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಚ್ಚ, ಭಗವಂತನ್ನ ನಾನು 108 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ತರ ತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥನ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರೆ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಎಂದು. ನಾನು ಒಂಥರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಅಂದಿದ್ರು, ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡು, ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾನೆಯೋ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಭಗವಂತ ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ನನಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಲು ಅಂತೀನಿ, ಭಗವಂತ ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನೋಡು, ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನೋಡು, ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಏನು, ನೀ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ನಿರ ಸಿಕ್ತೀಯಾ, ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅದು. ಸೊ ದಂಡಿ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದೇ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದುವೇ ಭಕ್ತಿ. ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಥ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು, ಕಿಂತು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೇಬೇಕು ಎಂದು. ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವ ನಿಮಿತ್ತ ಪಾರ್ಥ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಭಕ್ತಿ. ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ತೋ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಕಿಂತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಭಕ್ತಿ ಎಂದು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಅನುಕೂಲೇನ ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲನಂ ಭಕ್ತಿರ್ ಉತ್ತಮ ಎಂದು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಶರೀರದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀಭಕ್ತಿ ವಿದಾಂತ ವೈಕಾನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜವರ ಸಾರಾಂಶ.
ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತದಾಲಯೈ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯ ತದ್ಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ವಂಶಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಮಹಾಬದನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರತಿಶೇ ನಮಃ. ಮೈ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಹಾಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿ. ಅಪ್ನೆ ಪರಮಾರಾಧ್ಯತಮ್ ಗುರು ಪಾತ್ ಪದ್ಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಶಿಸ್ ಮದ್ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಕೇಶವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಾರ್ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣತಿ ಜ್ಞಾಪನ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಔರ್ ಅಪ್ನೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಭೀ ಮೈ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣತಿ ಜ್ಞಾಪನ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ. मैं संक्षेप में दो चार बातें कहना चाहता हूँ. I can speak somewhat English, but I want to speak in Hindi. And then this Prabhu will translate in Kannadi Bhasha language. ಹಮ್ ಲೋಕೋನೆ ಜೀವನ ಮೇ ಕೋಯಿ ಏಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್ ರಖನ ಚಾಹಿ. ಕೋಯಿ ಭೀ ಹೋ ಯದಿ ಉಸ್ಕಾ ಏಮ್ ಔರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀ ಹೈ ಲೈಫ್ ಕಾ ತೋ ವೋ ಪಶು ಹೈ ಜಾನವರ ಹೈ. ತೋ ಹಮ್ ಲೋಕ सबसे पहले सुख चाहते हैं. सुख चाहते हैं ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है. बात ठीक है, सुख सभी सुख चाहते हैं, किंतु जो प्रोसेस से हम सुख चाहते हैं उसमें सुख नहीं है. ಬುಢಾಪಾ ಆಯೇಗಿ, ರೋಗ ಆಯೇಗಾ, ತರಹ ತರಹಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯೇಂಗೆ. ಕಭಿ ಕಭಿ ಥೋಡಾ ಸಾ ಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರ ಪರಿವಾರ ಮೇ ಸುಖ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಥೋಡಾ, ವೋ ಭೀ ದುಃಖ ಜನಕ. ಇಸ್ಲೇ ಸಚ್ಚಾ ಶುದ್ಧ ಸುಖ ಜಗತ್ ಮೇ ನಹೀ ಹೈ. ಹಮ್ ಲೋಗ್ सुख के लिए विवाह करते हैं, मदिरा पान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, इसमें सुख नहीं है. सुख इसमें है आनंदमय ब्रह्मा. कृष्ण ही आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है. यदि उनका भजन किया, उनकी सेवा किया, तो उसमें सच्चा सुख मिलेगा. इसके अतिरिक्त कहीं भी सुख नहीं है. जो सच्चे दिल से सुख की उपासना, आनंदमय ब्रह्म ना, वो आनंद स्वरूप है कृष्ण, प्रेम स्वरूप है, उसका भजन करने से जरूर आनंद आएगा. बहुत से लोग भजन करते तो हैं किंतु गुरु नहीं करते. जब गुरु नहीं करते तो उनको कृष्ण नहीं मिलते, इसलिए वो सुखी नहीं रह सकते. उनको कुछ संसारिक कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं. इसीलिए सुख इसमें है. अभी जो श्लोक बोला भक्ति का, अन्ना अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा. तन से, मन से, वचन से, भावना से, सब प्रकार से जब कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जब तैल धारावत अविच्छिन्न गति से भगवान की सेवा होती है कृष्ण की, तो उसे भक्ति कहते हैं. किंतु जब भक्ति किसी सांसारिक वासना के पूर्ति के लिए नहीं होती, और ज्ञान कर्म योग तपस्या से आच्छादित नहीं होती, तब वो उत्तमा भक्ति कहलाती है। ध्रुव जी की भक्ति थी, भगवान की भक्ति की, आराधना किया, 6 महीने में भगवान को पा लिया, किंतु भक्ति शुद्ध नहीं थी। उसने राजगद्दी की लालसा से अपने पिता का राज्य पाने के लिए ये 6 महीने में भगवान की उपासना की, इसलिए सकाम भक्ति है, इसलिए शुद्ध भक्ति में नहीं आई। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसने नहीं किया, अपने राज्य के लिए किया। उनसे अधिक भक्ति किसकी है? प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज जी देखो भगवान के लिए क्या किया, अपना जीवन का बलिदान कर दिया, और भगवान नृसिंह दीजिए प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद में पूछा, वर मांगो, क्या चाहता है, तुम्हारी सब इच्छा पूर्ण कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं बनिया नहीं हूं, आई एम नॉट ए बिजनेसमैन। यदि हमारे हृदय में मांगने की कुछ भी इच्छा हो उसको दूर कर दीजिए। प्रहलाद महाराज ने अंत में यह मांगा कि यदि मैंने भक्ति की है तो हमारे पिताजी का उद्धार कर दीजिए, और जगत के लोगों का दुख लेकर के मैं यहाँ पर कोटि जन्मों तक दुख भोगी, और हमारे भक्ति के प्रभाव से सब लोग भगवान को प्राप्त हों, ये है। किंतु उसमें उन्होंने नृसिंह भगवान की क्या सेवा की? उनका भगवान ऐसा है जिसको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कभी थकता नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, भोजन की जरूरत नहीं है, कभी थकता नहीं है, तो वो क्या सेवा करेंगे? इसलिए नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति स्तुति करते हैं। इसलिए इनकी अपेक्षा हनुमान जी को अम्बरीश महाराज तन से मन से वचन से धाम मथुरा धाम वृंदावन मधुबन में रहते, ब्रजमंडल की परिक्रमा करते, मन से भगवान की कथाओं का चिंतन करते, हाथ से मंदिर का मार्जन करते, और शरीर से प्रणाम करते, मुख से भगवान की कथाओं को बोलते, कान से भगवान की कथा सुनते, समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते थे। इनसे भी अधिक श्रेष्ठ हनुमान जी हैं। आप लोग जानते हैं हनुमान जी कैसे रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, शादी विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य रहे, और सीता जी का पता लगाने के लिए समुद्र लांघ गए नाम के बल पर, और समुद्र लंका को जला करके भस्म कर दिया, और फिर तरह तरह से उनकी सेवा करते हैं। ये प्रेमी भक्त हैं, ये प्रेममयी सेवा है। इससे भी बड़ी सेवा क्या है? पांडवों की। कृष्ण ने इनका रथ चलाया, इनके घोड़ों अर्जुन के घोड़ों को सारथीपन किया, उनके घोड़ों को धोया, उनके घोड़ों के पैर को मालिश की, अपनी बहन सुभद्रा की शादी कृष्ण से कर दी, अर्जुन से शादी कर दी। ऐसे ऐसे देखो हनुमान जी को भी अर्जुन की सेवा में लगा दिया, गरुड़ कपिध्वज बने, और उनकी रक्षा की, अपने भी सेवा करते हैं, उनको भी। एक पलंग पर सोते हैं, अपना एक थाल में खाते हैं। इनसे भी, पांडवों से भी उद्धव श्रेष्ठ है। उद्धव की सेवा, उद्धव जी की भक्ति, उद्धव जी उनके प्रिय सलाहकार हैं, उनके शिष्य हैं, उनके साथी हैं, उनके सेवक हैं, सभी कुछ हैं। और इनसे भी बड़ी सेवा गोपियों की है, ब्रजवासियों की। ब्रजवासियों में सखा लोग अपने मुख से निकाल करके और कृष्ण को खिला देते, ये सेवा मीठी लगती है, कृष्ण को खिलाओ। यहाँ तक कि श्रीदाम से युद्ध करने में वो हार जाते हैं कृष्ण, ये प्रेममयी सेवा है। इनसे यशोदा मैया की सेवा है अधिक, कृष्ण भगवान होने पर भी उनको डांटती है, फट काटती है, बांध देती है वो खल से, कहती है अब फिर बदमाशी मत करना। उनसे भी गोपियों की सेवा, उनमें भी राधिका जी की सेवा, ये सब सेवा है। ये जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए, ऐसी प्रेममयी भक्ति। इतना कहा किस लिए? इसलिए हम लोग भी समझें सुख भगवान की सेवा में है। कैसी भगवान की सेवा? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तत धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना बजबधु भर गई न जाको। गोपियों ने कृष्ण की जो सेवा की है प्रेममयी, कृष्ण उसके वशीभूत हो जाते हैं, उनका ऋण उतार नहीं सकते। इसलिए उद्धव जी भी कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीनां प्राद रेणुम अभिक्ष्णशः। हे गोपियों, तुम्हारी चरण की धूलि ग्रहण करने के लिए वृंदावन में मैं गुल मलता कुछ होना चाहता हूँ, दूब की घास बनना चाहता हूँ। और उद्धव जी घास बन करके वृंदावन में उद्धव कुंड पर वह भी वर्तमान है। इसलिए सबसे जीवन में मूल सबसे श्रेष्ठ क्या चीज है? गोपियों जैसी उपासना हमारे हृदय में यदि आ जाए, यही जीवन का सबसे अधिक उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए ये आराधना ही सबसे, ये समझो, इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रेममयी भक्ति, और वो भी गोपियों जैसी भक्ति। ये तो जीवन का लक्ष्य हुआ ना? किंतु आरंभ करना होगा नीचे से, आरंभ करना होगा नीचे से, श्रद्धा से लेकर के। श्रद्धा आएगी कहां से? कहां से आई है? वेद में कहते हैं, वेद में कहते हैं जस देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु। जैसे भगवान के प्रति हमारी सेवा की भावना है, प्रेम है, प्रेममयी सेवा है, वैसे ठीक गुरु के प्रति हो तब तो भक्ति होगा, तो नहीं होगी, गुरु से भक्ति आएगी। इसके तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। भक्ति के लिए गुरु जी के पास में जाओ, बिना गुरु का ऐसे नहीं होगा, ऋतिकों से नहीं होगा, ऋतिक का भक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, उनका जाल छोड़ो, उसे ऊपर आओ। डोंट बिलीव इन गुरु ऋत्विक्स, बोगस थिंग टोटली। सो हम लोग को गुरु के पास में जाना होगा। गुरु क्या करता है? कृष्ण से संबंध कायम करता है। दी दिव्य ज्ञान, व्हाट इज कृष्ण नॉलेज, माया तत्व, जीव तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, भक्ति तत्व, माया तत्व, रस तत्व, सब सब ये गुरु देता है। ऋत्विक नहीं देगा, ऋत्विक में ये सब गुण नहीं होते। ऋत्विक चार प्रकार के होते हैं, ब्रह्मा अधर्यु होता उद्गाता। जो ऊपर से सब देखभाल करता है वो ब्रह्मा, अधर्यु जो हवन करता है वो होता, उद्गाता जो स्तव स्तुति करते हैं। इनसे भक्ति से कोई संबंध नहीं, दक्षिणा दे दिया चले गए, कोई संबंध नहीं है, इसको समझो। इसलिए बिना गुरु के नहीं होगा। और भी शास्त्र में कहते हैं भयम द्वितीयादव निवेशतस्या, उसमें गुरुदेव तात्मा, अपने गुरु जी की सेवा करो, पहले गुरु अर्चन पहले करो और तब कृष्ण का, नहीं तो सर्वम निष्फलम भवेत। पहले गुरु जी की सेवा करो
उनका अर्चन करो, तब भगवान का अर्चन करो। तो जिसका गुरु ही नहीं है वो सबसे पहले किसको प्रणाम करेगा, किसका अर्चन करेगा, तो भक्ति नहीं होगी। ये सीधी सी बात है। देखो कृष्ण ने अपनी बांसुरी की तान से ब्रह्मा जी को गोपाल मंत्र और काम गायत्री दिया, फिर ब्रह्मा जी ने किसको दिया, नारद जी को। नारद जी ने दिया किसको,
व्यास जी को।
व्यास जी के बहुत शिष्य हुए, सुखदेव जी भी हुए, और फिर व्यास जी के मध्वाचार्य शिष्य हुए, व्यास तीर्थ इत्यादि बहुत थे उनके शिष्य, जिसे बासर घट्टा कहते हैं ना, क्या बासर घट्टा। तो ये सब बिना गुरु के नहीं हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने, श्री रामचंद्र जी ने, कृष्ण ने गुरु किया। क्या करने की गुरु की जरूरत थी, इसलिए यदि चाहते हो ठीक तो सद्गुरु को पास में जाओ, वो कृष्ण से तुम्हारा संबंध ज्ञान देगा। बहुत से लोगों को ऐसा भ्रांत धारणा है, भूल है उनको, क्या भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद शिष्यों को दीक्षा दिया, जब दीक्षा दिया तो प्रेम दिया, तो फिर वो कैसे गिर गए। उनके जितने भी सन्यासी हैं टॉप टू बॉटम गिर गए सभी, और अभी लोग भी गृहस्थ बन रहे हैं, विवाह शादी कर रहे हैं, सब छोड़ छाड़ रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या वो नहीं जानते थे? हाँ जानते थे, जान करके भी उनके द्वारा हरि नाम दे करके विश्व में तो कृष्ण नाम का प्रचार कराया, ये तत्कर आए उनके द्वारा, किंतु जीव स्वतंत्र है, भगवान भी उसके ऊपर में हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए जीव अपनी इच्छा का सदुपयोग और दुरुपयोग कर सकता है। यदि नहीं होता तो तटस्थावश्य से जीव ये संसार में क्यों आता, भगवान की सेवा क्यों नहीं किया। इसलिए जी को उन्होंने दीक्षा दी। दीक्षा दो प्रकार की होती है, एक शब्द ब्रह्म की दीक्षा विद्वत रूढ़ी और एक अविद्वत रूढ़ी। लोग जो योग्य हैं उनको दीक्षा दे करके कृष्ण से संबंध कायम करता है गुरु, ये तुम्हारा कृष्ण से साथ में क्या संबंध है, हम उनके सेवक तो हैं, किंतु सेवक भी पांच प्रकार के होते हैं, शांत दास सख्य वात्सल्य और मधु। इन प्रकार से संबंध होता है कृष्ण से, हम कौन है कौन बतलाएगा। गुरु अपने सिद्ध बल से ये समझता है और समझ करके अपने शिष्य को यह ज्ञान देता और कृष्ण से संबंध करा देता है, इनमें से तुम्हारा संबंध क्या है। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जो लोग आए हैं, ठीक ठीक गुरु धारण किए हुए हैं, उनका संबंध गोपियों जैसा कृष्ण के साथ में है, गोपाल मंत्र इत्यादि में ऐसा दिया गया है। इसलिए यदि कोई भक्ति चाहता है तो आज ही अभी तुरंत, जैसे भागवत में कहा गया लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अप्यत धीर तूर्णम जतेत न पतेत अनुमत्त जा तूर्णम। अभी शीघ्र मनुष्य जीवन का कोई ठीक नहीं, ऋत्विक का को प्रत्याग करके सदा के लिए सदगुरु अवलंबन करो, और गुरु अवलंबन करके कृष्ण के साथ में संबंध रख करके गुरु की सेवा करके और भजन करो। रूप गोस्वामी ने 64 प्रकार के भक्ति के अंगों को लिखा है, और सबसे पहला क्या लिखा, आदव गुरु पदाश्रय। जब गुरु पदाश्रय नहीं तो भक्ति कहां से आएगी, और फिर पदाश्रय करने के बाद में शिक्षा और दीक्षा, और विषम बहिन गुरु सेवा, गुरु सेवा करो और तब फिर कृष्ण की सेवा करो। तो यदि रूप गोस्वामी की यह बात नहीं मानेंगे जो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग परिकर हैं और पार्षद हैं, तो भक्ति कहां से आएगी? इसलिए डोंट डिले, एट वंस इन ए मोमेंट यू शुड गिव अप ऋत्विक एंड ऑल बोगस थिंग एंड ट्राई टू हैव ए बोनाफाइड गुरु. Then you will be happy and real bhakti will come.
Haribo!
You should know that you have not left your house, relatives, your wealth, position for a scorn or ritvik. Only for bhakti you have come. So where there is bhakti, we should approach there. Ritvik had no bhakti. I know those who are characterless and so many bad qualities, now they are ritviks. How they can give bhakti? I know they cannot. Never they cannot do. So any qualified, bona fide guru, search him. And if you tell that after Swamiji no guru in this world, this is bogus thing. If no guru, world will be
ruined.
Krishna is so
kind that always at the time of Satyayug, Narada was there, Vyas was there, all others were there. In Treta Yuga, Vasishtha and others. In Dapar
Yuga,
Bhaguri, Sandilya and so many rishis. Now even Chaitanya Mahaprabhu, Ishwarpuri, Madhavendrapuri, they are all with Guru. And up till now, you see, up till now, Swamiji has initiated so many. Our Guru Maharaj, his all God brother, Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Goswami Maharaj, Ban Maharaj, Bhakti Dait Madhav Maharaj, they are making disciples and their disciples are also disciples. And everywhere preaching is going on. So you should not think that after Prabhupada there will be no guru. It is absurd and false. So at once I request you to have a bona fide guru who can help you in Krishna Bhakti. And be happy forever. Go Premanande. Oh, Nam.
Hare Krishna, this morning, day before, and the day that before that day, and even the day before that day, so many devotees received initiation, in total 35 devotees. We will quickly announce the names. Shri Guru Dev will give you a new transcendental name for those who have received Harinam initiation. Diksha initiation, Basant Das Prabhu. Harinam and Diksha received Lakshama. Her new name is
Lakshmi Devi.
Lakshmi Devi. Ki Jai. Yeah.
Receiving Harinam and Diksha, Arundhati.
Oh, Arundhati Devi Ki Jai.
Receiving Harinam and Diksha, Krishna Kanta.
No, Ravi.
Ravi Kiran.
Oh. Krishna Kanta.
Krishna Kanta.
Receiving Harinam, Deepak Painu Bazas.
Dear Krishna.
Dear Krishna Prabhu Ki Jai.
Receiving Harinam, Sashi Dar.
Sashi Kanta.
Shashi Kant Prabhu Ki Jai.
Rishikesh, receiving Harinam.
Rishikesh Prabhu Ki Jai.
Shiva Kumar, receiving Harinam.
Shivananda
Prabhu Ki Jai.
No, you not did this.
I did this one in the beginning.
No, you told him to come, he start from here.
No, I started with this one.
No,
this
is Diksha. Complaining.
Whoever is complaining, it may be Madhav Maharaj. Basant Das Prabhu we announced as the first one. Whether he is here or not, his name is the same.
You are Basanta?
Oh.
So what name?
Basant Das.
Basanta.
Hey, love.
Receiving Harina Marcus, son of Shmuni Raj.
New name Manmohan Das.
Manmohan Das Prabhu ki jai.
Receiving Harina Vinod, son of Sidmalanga.
Vinod Bihari.
Vinod Bihari Prabhu ki jai.
Receiving Harina Mabilas
Das Madhu Mangal. Madhu Mangal.
Madhu Mangal Prabhu ki jai.
Janadama. Janadana.
Janardhan. Janardhan Prabhu ki jai.
Nani Ama receiving Harinam.
Nandini.
Nandini Devi ki jai.
Srinivas receiving Harinam. Srinivas
Prabhu.
Srinivas Prabhu ki jai.
Nagaratna receiving Harinam.
Nagari Dasi.
Nagari Dasi ki jai.
Anil Kumar receiving Harinam.
Anang Mohan Das.
Anang Mohan Das Prabhu ki jai.
Dr. Pushpa Kumar receiving Harinam.
Pushpalata Dasi.
Pushpalata Dasi ki jai.
Lin Yasoda receiving Harinam.
Yasoda Devi ki jai.
Prema R receiving Harinam.
Prema Dasi.
Prem Dasi ki jai.
Anand receiving Harinam.
Anang Mohan.
Anang Mohan Prabhu ki jai.
Vikram Vivek receiving Harinam.
Brajesh Das.
Brajesh Das. Brajesh.
Harinder Sharma receiving Harinam.
Haridas.
Haridas Prabhu ki jai.
And now Brajesh.
What about Vivek?
Two?
There are two people.
Oh. So there are two. One is Vikram. Can you stand up, Vikram? And one is Vivek. Who is Vivek? So
oh,
one
yeah.
of them, his name is Brajesh.
Who is Brajesh?
Vikram
who?
Is Brajesh.
Vikram.
And
Brajesh.
Brajaraj or Brajanath.
Oh, Brajanath Prabhu ki.
Why not Jiva? Okay, what are we? Harinder Sharma receiving Harinam, Haridas.
Haridas Prabhu ki jai.
Rang Sharma receiving Harinam, Ranga Devi.
Ranga Devi ki jai.
Arun Shastri receiving Harinam, Anadi Krishna.
Anadi Krishna Prabhu ki jai.
Annapurna receiving Harinam. Annapurna Dasi.
Annapurna Dasi ki jai.
Gayanasvar receiving Diksha. Gaur Hari.
Gaur Hari Prabhu ki jai. Gaur Hari, very good name. Gaur Hari. Gaur Hari.
Pradeep receiving Harinam. Prem Pradeep.
Prem Pradeep, Prabhu ki jai.
Puskarnath Trisal receiving Harinam, Purushottam.
Purushottam Das ki jai.
Jai Kishori receiving Harinam. Jai Kishori.
Jai Kishori Devi ki jai.
Binod Kaul receiving Harinam and Gopal Mantra. Binod Kaul. Binod Kumar.
Binod Kumar ki jai.
Kinshu receiving Harinam.
Kalavati.
Kalavati Devi ki jai.
Rasis receiving Harinam.
Ramdas.
Ramdas Prabhu ki jai.
Chandrakanta Kaul receiving Harinam and Gopal Mantra.
Chandrakanta Devi ki jai.
Shuddha Nitai Das receiving Harinam.
And Gopal Mantra.
And Gopal Mantra.
Only Harinam is
okay, Gopal Mantra also.
Gopal Mantra also.
Nitai Das.
Nitai Das Prabhu ki
Nitai
jai.
Gaur Premananda. Mangalo Yatra ki jai.
Ek kirtan kar do jai.
Translation. Canada.
What?
Canada translation.
Oh. Oh, so you should do. I forget.
Then take this.
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಪಾದ ಪದ್ಮಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಹಂಸ ಗುರುವಾದಿಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟ ಮುದಂಟ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನೆಲೆಯಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೃಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಷ್ಣವ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ